لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أهل إيمان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ چھبیسویں پارے میں سورہ حجرات کی آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اگر کسی مسئلے میں اللہ کا حکم آ جائے، قرآن مجید کا حکم آ جائے، یا اگر کسی مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، آپ کی کوئی سنت، آپ کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، تو پھر ہم اس سے آگے مت بڑھیں۔ یعنی ہم اللہ کے اس حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نظر انداز نہ کریں۔ ہمارے اس دین کے دو بنیادی سورسز ہیں، یعنی کہاں سے ہم نے یہ دین لینا ہے، اس میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب قرآن مجید تو مابین الدفتین موجود ہے، مابین الدفتین سے مراد دو گتوں کے مابین، مساجد میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی آپ نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حدیث کی جو معروف کتابیں ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، تو ہم نے دین کہاں سے لینا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہمیں دین کو فالو کرنا ہے، ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، دین اسلام پہ۔ لیکن جس دین اسلام پہ عمل کر کے ہم نے آخرت میں نجات پانی ہے، جہنم سے بچ جانا ہے یا جنت میں چلے جانا ہے، وہ دین ہمیں کہاں پہ ملے گا؟ تو وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ دو چشموں میں ہے، ایک قرآن مجید کا چشمہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا چشمہ۔ دین کے بہت سے احکامات ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، اللہ کی کتاب میں ملتے ہیں، اور بہت سے احکامات ایسے ہیں جو ہمیں سنت میں ملتے ہیں۔ سنت کیا ہے؟ سنت تین چیزوں کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، اور تیسرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ اس پہ خاموش رہے، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا، جیسے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، دیکھو نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، ایسے نماز پڑھو، خضوا عنی مناسککم، دیکھو میں کیسے حج کر رہا ہوں، ایسے حج کرو۔ تو ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کہہ رہے تھے یہ کرو یہ کرو، یہ نہیں کرنا یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ سنت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں لیکن کیا، ایک کام خود سے کیا، تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، سنت ہے۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، कि आप क्या करते हैं। तो सहाबा ने आगे उसको बयान किया, उसको नरेट किया, वो हदीस की किताबों में नकल हो गया, जमा हो गया, कंपाइल हो गया कि आप सल्लम ने क्या कहा और अल्लाह के रसूल सल्लम ने क्या किया, सब हदीस की किताबों में मौजूद है। फिर तीसरी चीज़ ये कि आप अलैहिस्सलाम के सामने एक काम हो रहा था और आप उस पर खामोश थे, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी जायज़ है। अगर वो काम मना होता तो आप अलैहिस्सलाम उससे रोक देते। तो ये भी हमें हदीस की किताबों में मिलता है, इसको तकरीर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साइलेंट अप्रूवल के ज़रिए से, खामोशी के ज़रिए से एक काम की तायद कर दी। सहाबा इकराम आम तौर पे कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम ये किया करते थे और अल्लाह के रसूल ने हमें मना नहीं किया, तो ये भी सुन्नत है। तो दीन इस्लाम के दो बुनियादी सोर्सेज हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा नौजवान या जितने लोग इस हाल के नीचे बैठे हैं, हम ज़रा सोचें कि जब हमें कोई मसला दरपेश आता है तो हम क्या करते हैं। मतलब हमें कोई सवाल पैदा होता है कि इस्लाम में ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, इस्लाम में ये हलाल है, ये हराम है, तो हम क्या करते हैं, हमारा इमीडिएट सोर्स क्या होता है जहाँ से हम इस्लाम के बारे में मालूमात लेते हैं। पुराने वक्तों में तो आपके महल्ले की मस्जिद के मौलाना साहब होते थे, घर में जो कारी साहब आते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो लोग उनसे मसले मसाइल पूछ लेते थे। जहाँ लोग जुमा पढ़ने के लिए जाते थे तो इमाम साहब से, खतीब साहब से पूछ लेते थे। लेकिन इस वक्त नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सोशल मीडिया है। मस्जिद में आने वाला नौजवान बहुत कम है। कितने लोग मस्जिद में आके नमाज के लिए, कितने लोग आते हैं जुमा के लिए, कितने आते हैं इस वक्त में भी देखें बाज़ारों में 95% लोग तो बाज़ारों में बैठे होंगे, 5% को मस्जिद में आ जाते हैं। अब जो मस्जिद में आता ही नहीं है, जिसका उलमा से राबता ही नहीं है, अब वो क्या करेगा, वो दीन कहाँ से सीखेगा, वो कहाँ से लेगा? तो वो इंटरनेट से लेता है, फिर वो गूगल में जाके सर्च करता है, गूगल से पूछता है, हाँ भाई मुझे ये मसला बताओ। वो यूट्यूब पे जाके सर्च करता है, फिर उसे वीडियो मिलती हैं बांध बांध की, इस मौलाना साहब की, उसकी। अब उसे पता ही नहीं है, उसे बस ये पता है कि ये मौलाना साहब का ये नाम है और उन्होंने इस पर गुफ्तगू की हुई है। तो हमारे यहाँ इस वक्त नौजवान नस्ल जो है वो दीन कहाँ से ले रही है, यूट्यूब से ले रही है, और सबसे बड़े जो उनके रहनुमा हैं, गाइड हैं, वो मौलाना गूगल साहब हैं, अल्लामा गूगल कहना चाहिए बल्कि। तो ये इस वक्त बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। हमें दीन कहाँ से लेना था, कुरान से, सुन्नत से। हमें कुरान और सुन्नत के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना था। मुझे याद है कि हम बचपन में हदीस की किताबें पढ़ते थे, मैट्रिक में हम थे तो हम सुनन इब्ने माजा पढ़ते थे, मिशकात शरीफ पढ़ते थे, सही मुस्लिम पढ़ते थे, यानी उनके तर्जमे अवेलेबल होते थे। तो आज आप यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे से पूछ लें कि कभी कोई हदीस की किताब देखी है, पढ़ी नहीं, देखी है, 50 की क्लास में एक कहता है कि हाँ मैंने देखी है। कहाँ देखी है? वो भी लाइब्रेरी में देखी है। ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। हमें अपने दीन के साथ या दीन के जो बुनियादी प्राइमरी सोर्सेज हैं उनके साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करना है। हमें कुरान का तर्जमा पढ़ना है, हमें हदीस के तराजम पढ़ने हैं, हमने उनका मुतालिया करना है कि कुरान का तर्जमा किसके लिए किया गया। उलमा को तो अरबी आती है, सही बात है, उलमा को तो अरबी आती है, तो उलमा ने तो अपने लिए तो कुरान का तर्जमा नहीं किया, किसके लिए किया? आम लोगों के लिए किया है कि जिनको अरबी नहीं आती वो उर्दू में कुरान पढ़ लें, जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी है तो अंग्रेज़ी का तर्जमा पढ़ लें, पंजाबी में कुरान का तर्जमा मिल जाता है, पश्तो में मिल जाता है, सिंधी में मिल जाता है, हर ज़ुबान में मिल जाता है, सैकड़ों दुनिया की ज़ुबानें हैं जिसमें कुरान का तर्जमा है। तो कभी ऐसा हुआ हो मिसाल के तौर पे कि आपको कोई मसला पेश आया और आपने कहा कि अच्छा मैं गूगल या यूट्यूब के बजाय मैं कुरान को देखता हूँ, मैं हदीस की किताब खोल लेता हूँ कि वहाँ पे इस मसले का क्या हल है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आने वाली नस्लों का ताल्लुक यानी जिनको पढ़ना लिखना आता है, अब सारी नौजवान नस्ल जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, अब उर्दू तो पढ़ लिख लेती है ना, तो हमने ये दरमियान में जो मीडियम डाल रही हैं, ठीक है, वास्ते डालनी है, उसकी वजह से क्या है कि अब नौजवान नस्ल परेशान है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही। हर कोई ये कह रहे हैं कि जी एक मौलवी साहब ये कहते हैं, दूसरे मौलाना साहब ये कहते हैं, पता ही नहीं सच क्या है। तो भाई सच क्या है? सच आपसे चंद कदम के फासले पर है। कुरान खोल लें, हदीस की किताब खोल लें, आपको मालूम हो जाएगा कि सच क्या है। बाजार में हम जूता खरीदने के लिए जाते हैं तो हम 8-10 दुकानें घूमते हैं एक जूते की खातिर, कंपैरिजन करते हैं किसका जूता बेहतर है, किसका रेट अच्छा है, बहस मुबासा करते हैं। दीन के मामले में हम बिल्कुल, किसी ने भी किसी रुख पे लगा दिया तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। हम एक हुजूम बन चुके हैं, एक मॉब बन चुके हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, अजीब व गरीब किस्म के उनके नज़रियात हैं इस्लाम के हवाले से। कोई आता है कहता है मैं महदी हूँ, मैंने सैकड़ों मरतबा खुदा को देख लिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, अब ये पाकिस्तान की हुकूमत मेरे हवाले कर दो, आर्मी चीफ मेरे पीछे चल पड़े, फला हो जाए, ये हो जाए। अब उसके भी फॉलोअर है, उसको भी मिल गए, लोग उसकी बातों में भी आ गए। कोई साहब आ रहे हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर, अब आप देखें वो करंट लगा रहे हैं लोगों को, हैं ठीक है, तो वो इस तरह से इशारे करते हैं और अगला मुर्गे बसमल की तरह तड़पता है, जैसे किसी मुर्ग को आप ज़िबा करते हैं ना तड़पता है, तो ऐसे पूरे सिलसिले हैं हजराते सूफिया के। अब उनका काम यही है, अब लोग उसमें क्या हो रहा है जी, कल्ब जारी हो गया जी, दिल जारी हो गया, ठीक है। अब ये दीन के नाम पे चल रहा है, ठीक है। फिर एक और साहब हैं, वो कुरान बयान कर रहे हैं, कुरान क्या बयान कर रहे हैं, अब उनकी भी एक वीडियो देखें तो 1 मिलियन क्रॉस की हुई है, मिलियन से ज्यादा, मिलियन का 10 लाख व्यूज। और उन साहब के नजरियात क्या हैं, कुरान से क्या पढ़ा रहे हैं, कुरान से ये पढ़ा रहे हैं कि जी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वजूद ही नहीं है, वो तो पैदा ही नहीं हुई है, पैदा ही नहीं हुई, मतलब उनको नबी मानना तो दूर की बात, उनकी पैदाइश ही नहीं। फिर ये रोज़ा मुबारक क्या है जो मस्जिद नबी में, ये रोज़ा मुबारक के अंदर जो मदफून है ये कौन है जी, ये असहाबे काफ है। अब उसको भी फॉलोअर मिल गया, ठीक है। तो हमारी नौजवान नस्ल जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे बैठती है, किसी को सुनना शुरू कर देती है। अब एक साहब आते हैं, वो कहते हैं जी आओ मेरे साथ मुनाजरा करो, अबू बकर और उमर मुसलमान थे। अब उस साबित करने की कोशिश करें जी ना अबू बकर मुसलमान थे ना उमर मुसलमान थे, अब उसको भी फॉलोअर मिल गया। तो हमारी नौजवान नस्ल, हमने उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया, स्मार्टफोन उनके पास है, चेक एंड बैलेंस हमारे पास है कोई नहीं, सारा दिन सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बैठे हैं, ठीक है, या म्यूज़िक गाने सुन रहे हैं, या फिल्में मूवीज़ देख रहे हैं, या रील शॉर्ट देख रहे हैं, और अगर उसमें कोई मजहबी बात सुनने को मिलती भी है तो ये भांत भांत की बोलियाँ, कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर की हांक रहा है, समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने दीन को फॉलो करना है कि भाई दीन का सही कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा सही सच्चा दीन क्या है, तो उसके लिए हमें किताब व सुन्नत के साथ बराए रास्त ताल्लुक कायम करना होगा। ये दरमियान में से मीडियम निकालने होंगे कि फ़लाँ मौलाना साहब ये कह रहे हैं, फ़लाँ ये कह रहे हैं, वो ये कहते हैं, फ़लाँ ये कहते हैं, जैसे मसालिक में भी ये इख्तलाफात आपको मिल जाते हैं। भाई आप कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, आप बराए रास्त हदीस का मुतालिया करें, रसूल सल्लम क्या, एक बहुत मारूफ हदीस है, हदीस जिब्रील, उसके बारे में कहा गया उम्मुस्सुन्ना है, तमाम हदीसों की वो माँ है। जैसे कुरान में सूरह फातिहा का मुकाम है, ऐसी अहादीस में, अहादीस के ज़खीरे में हदीस जिब्रील, उसको हदीस जिब्रील कहते हैं क्योंकि उसमें अरे जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। ये आपको हदीस की हर किताब में मिल जाएगी। अब उस हदीस में भी क्या है, बसरा के दो नौजवान हैं, अब उन नौ वो एक का नाम हुमैद है, एक दूसरा उसका दोस्त है, तो बसरा शहर के अंदर, इराक का शहर है, वहाँ एक डिबेट चल पड़ी। डिबेट ये चल पड़ी कि तकदीर है कि नहीं है। बसरा में कुछ उलमा कह रहे हैं जी तकदीर है, कुछ कह रहे हैं नहीं है, कुछ कह रहे हैं यार हम तकदीर को मानते हैं, कुछ कह रहे हैं यार तकदीर तो समझ में नहीं आती कि अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है जन्नत है जहन्नम है, इसने जन्नत में जाना है इसने जहन्नम में जाना है। अब जिसने जन्नत में जाना है तो उसका मतलब उसने तो जाना ही जाना है, अब उसमें उसका क्या कमाल है। और जिसने जहन्नम में जाना है अल्लाह ने लिख दिया है लोहे महफूज में किताब में, तो उस बेचारे का क्या कसूर है। तो कुछ लोग कह रहे थे तकदीर वकदीर हम नहीं मानते। ये बसरा शहर में सहाबा के ज़माने में ये डिबेट चल पड़ी थी कि तकदीर है कि नहीं। सवालात उठते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, कुछ लोग बहक जाते हैं, कुछ सही रास्ते पे कायम रहते हैं। तो अब उन दोनों नौजवानों ने एक फैसला किया, यार समझ नहीं आ रही, इन मौलवियों के पास बैठे हैं तो लगता है तकदीर है, इन मौलवियों के पास बैठे हैं तो इनकी बातें भी सच्ची लगती हैं, भाई तकदीर कोई नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि हम जाते हैं हज और उमरा के लिए मक्का मदीना, और वहां देखेंगे रसूल सल्लम के किसी सहाबी को, और हम उससे पूछेंगे कि आप हमें ये बताएं कि रसूल सल्लम ने तकदीर के बारे में क्या कहा है। जो सहाबी वो जवाब देंगे हम उसके बाद इनसे जान छुड़ाते हैं। बस अल्लाह के रसूल ने कह दिया, भाई मुझे समझ में आती है नहीं आती, बस है तकदीर है मुझे पता चल गया, अल्लाह के रसूल ने कह दिया, नहीं है तो नहीं। ठीक, तो अब वो दोनों जाते हैं मक्का में हरम में, तो वहां जाके लोग पूछते हैं अल्लाह के रसूल के कोई साहबी कोई साहबी कोई साहबी। लोगों ने कहा वो देखो वो हरम के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं मस्जिद हरम में, अब्दुल्ला बिन उमर इनका नाम है, दौड़ती हुई गया उनको घेरे में ले लिया, जी हम बसरा से आए हैं, हमारे शहर में डिबेट चल पड़ी है, कुछ उलमा तकदीर को मान रहे हैं कुछ इनकार कर रहे हैं, आप हमें ये बताएं रसूल सल्लम से आपने तकदीर के बारे में क्या सुना है, जो आप कह देंगे बस ठीक, बस उसके बाद हमें क्या लगे कौन क्या कह रहा है। ये असल में एटीट्यूड होना चाहिए इख्तलाफात के अंदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ हम रुजू करें, हदीस की किताबों की तरफ हम रुजू करें, हम हदीस की किताबों का मुतालिया करें, उनको खोलें क्या लिखा हुआ है, हदीस की किताबों के तर्जमे हो चुके हैं, ठीक है हम उन तर्जुमों को जो है वो अपने सामने रखें। तो ये बहुत ज़रूरी हो चुका है, बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम अपने प्राइमरी सोर्सेस के साथ अपना ताल्लुक कायम करें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो मुझे बताएं दीन के नाम पे क्या कुछ तमाशा नहीं लग रहा, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, एक साहब दिखा रहे थे कि जी वो एक दरबार है सिंध के अंदर, ठीक है उसका लोग तवाफ़ कर रहे हैं और सामने एक पुराना दरख्त पड़ा हुआ है, ये क्या है कि जी ये वो पीर साहब जो यहाँ मदफून है ये उनकी मिसवाक थी, मिसवाक उन्होंने फेंकी वो मिसवाक बड़ी होते होते दरख्त बन गई, अब लोग उस दरख्त के नीचे से गुजर रहे हैं, क्या है इससे उनको बरकत हासिल होगी बीमारियों से शिफा मिलेगी। अब भाई ये किसने देखा है, कौन से वीडियो कैमरे लगे थे कि वो छोटी सी मिसवाक फेंकी थी तो इतना बड़ा दरख्त बन गया। पर जो कहानी आप लोगों को सुना दें लोग उस कहानी पे ईमान ले आते हैं और लोग उसको दीन समझ लेते हैं। तो हमने दीन बस किससे कहानियों को बना लिया। आज हमारे यहां मिंबर के ऊपर से अब आप देखें अक्सर और बेशतर जुमे के खुतबात में आपको क्या मिलता है, कहानियां मिलती हैं बस, किससे कहानियां चुटकले लतीफे, लोग ऐसे मौलवी साहब को पसंद करते हैं। बहुत कम कुरान बयान होता है, बहुत कम हदीस बयान होती है, जो असल हमारा दीन था। तो अब दीन बस इन्हीं चीजों का नाम रह गया, क्या आप झूठे किस्से वाकयात बना के लोगों को सुनाएं तो लोगों को भी बड़ा इत्मीनान रहता है, लोगों को भी बड़ा इत्मीनान रहता है, और सच्चे वाकयात भी अगर बयान करते हैं तो उसका हमारे दीन से कोई खास ताल्लुक नहीं। एक बहुत बड़े मौलाना साहब उनकी मैं वीडियो देख रहा था, अब वो दीन का मसला बयान कर रहे हैं, दीन का मसला ये बयान कर रहे हैं कि जी किचन के अंदर केला किस तरह रखना है, ठीक है तो वो बकायदा किचन के अंदर जो है वो केले को इस तरह से रख रहे हैं कि केले का जो रुख है ना वो किबले की तरफ होना चाहिए, जब आप किचन में केला रखें तो केले का रुख किबले की तरफ होना चाहिए। ये दीन का बड़ा अहम मसला बयान हो रहा है, भाई लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, लोग रोज़ा नहीं रख रहे, भाई लोगों को नमाज पे लेके आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यामत वाले दिन सबसे पहले किस चीज़ का पूछा जाएगा, नमाज का, नमाज सही निकली तो बाकी अमाल भी सही निकलेंगे। लोग ज़कात अदा नहीं करते, जो चीज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, लोग फ़राइज़ को पूरा नहीं कर रहे, लोगों को फ़राइज़ बताएं, लोग हराम के अंदर पड़े हैं, सूद खा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को हराम से मना करें। शराब और ड्रग्स कितनी ज़्यादा हो चुकी है हमारे यहाँ, जिना कितना आम हो चुका है, लोगों को ये बताएं कुरान और हदीस से, इससे रोकें। अब आप दीन के नाम पे क्या बता रहे, लोग भी आगे से वाह-वाह किए जा रहे हैं। अब वो मौलाना साहब अपना वाक्या बयान कर रहे हैं, वो मौलाना साहब, अब उनकी पूरी एक जमात है, उस जमात के वो अमीर हैं माशाल्लाह से, ठीक है। अब वो कह रहे कि जी वो घर में एक दफ़ा मौजूद थे तो उन्होंने एक चींटी देखी, तो जब उन्होंने वो चींटी देखी तो उन्होंने कहा ये चींटी अपने कबीले से बिछड़ गई है, तो उन्होंने उस चींटी को उठाया और अपने घर में सुराख ढूंढना शुरू कर दिया, चींटियों का सुराख कहाँ पर है, ताकि मैं ये चींटी वहाँ पर पहुँचा दूँ और अपने कबीले के साथ ये मिल जाए। चलें यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई बड़ा नेकी का काम है कि आपने घर में एक चींटी देखी और आप उसको उठाएं और आप अपने पूरे घर का चक्कर लगाएं कहाँ चींटियों का सुराख है, बिल है, और आप वो चींटी वहाँ छोड़ दें। अच्छी बात है, वैसे वो चींटी खुद भी घर पहुँच जाती, लेकिन चलें बहरहाल अगर आपको लगता है तो आप ये काम कर लें। लेकिन असल सीन इसके बाद होता है, वही मौलाना साहब एक मर्तबा और दरस दे रहे थे, और ये सारा सोशल मीडिया पे मौजूद है, रिकॉर्डेड है, ठीक है, इसके भी आगे जो है वो लाखों में व्यूअर्स हैं और लोग पता नहीं आगे क्या क्या वाह वाह कर रहे हैं। वही मौलाना साहब दोबारा दरस दे रहे थे तो एक मुरीद साहब खड़े हो गए, कहने लगे हज़रत एक मसला पूछना है। अब जब आप ऐसे मसले बयान करेंगे तो लोग भी वैसे ही मसले पूछेंगे, लोग हलाल हराम के मसले थोड़े पूछेंगे। तो मौलाना साहब ने कहा भाई क्या मसला है, कहने लगे जी मैं उमरे के लिए मदीना गया था, ठीक है, गए वहाँ से मैं खजूरें लेके आया, ठीक है, ले आए, खजूर में से कीड़ा निकल आया, मदीने के खजूर में से कीड़ा निकल आया। अच्छा अब मसला क्या है, मसला ये है कि अब इस कीड़े को मदीने पहुँचाना है कि नहीं, क्योंकि ये तो अपने कबीले से बिछड़ गया है ना, इसका कबीला तो मदीने में है। तो अब वो मौलाना साहब ने उसको जैसे तैसे डील किया, वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ दीन के नाम पे क्या बयान हो रहा है। आप ये देखें टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ये बयान हो रहा है, सोशल मीडिया पे ये बयान हो रहा है और ये वायरल हो रहा है। अब ये क्या हमारे दीन के मसले हैं डिस्कस करने के, ठीक है। तो अब लोगों के पास सवालात भी ऐसे रह गए हैं, फ़राइज़ की कोई परवाह नहीं है, हलाल हराम की कोई परवाह नहीं है, ठीक है, लेकिन यह है कि ये छोटे छोटे मसले लेके लोग जो है वो हमारे यहाँ, वो एक हजरत वो फूंक मारते थे, पूरे मजमे को शिफा मिल जाती थी। जब से वो वकारुल हसन साहब ने उनको एक्सपोज किया है, वो सारी शिफा गायब हो गई है। शुभ शुभ वाली सरकार, ठीक है, वो भाई अगर इतनी शफा मिलती थी तो ये हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने खड़े किए हैं, ठीक है, और लोग जो है वो मिलियंस लगाते हैं इलाज के ऊपर, तो आपकी फूंकों मतलब एक फूंक से अगर शफा मिल जाती है तो लोगों को क्या इतना लाखों लगाने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया आपके कदमों में आ जाती। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एजुकेशन नहीं है यहाँ, आवाम को जिस तरफ लगा दें आप। हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने हर जो हमारे यहाँ इस किस्म के रिलीजियस लीडरशिप है, मज़हबी रहनुमा है, अल्लाह ने हर मज़हबी रहनुमा के हिस्से के कुछ झल्ले लिख दिए हैं, वो झल्ले उसको मिल के रहने, आप जितना मर्ज़ी उनको समझा लें, उन्हें समझ नहीं आती। हमारे एक दोस्त वो बताते हैं कि ये जो थर का थर पारकर का जो सहरा डेजर्ट है, वहाँ वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे, तो वहाँ पीर पिगाड़ू की जो है वो लैंड क्रूज़र गुजरी। पीर पिगाड़ू बहुत बड़ी गद्दी है, लोग जानते हैं, सियासी गद्दी भी है, मज़हबी गद्दी भी है, वो उनके जो मुरीद होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनकी एक बात के ऊपर जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो जब वो लैंड क्रूज़र गुजरी है तो वहाँ लोग जो मिट्टी के घर होते हैं, आपको पता है वहाँ कितनी गुर्बत है थर में, तो वो लोग दौड़े हैं और उन्होंने वो रेत उठाई है। कहते हमने पूछा भाई ये रेत उठा के क्या करोगे, तो उन्होंने कहा जी ये पीर साईं की लैंड क्रूजर के टायर से लगी हुई रेत है, इसको हम उठा के घर में ले जा के रखेंगे तो घर में बरकत आएगी। तो ये सूरत हाल है हमारे यहाँ, ये दीन के नाम पे किस्से कहानियाँ। अब वो आपको ऐसे पीर साहब बहुत नज़र आ जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, पांच सात गार्ड्स आगे हैं, पांच सात गार्ड्स पीछे हैं, छह सात लैंड क्रूजरे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बस एक दरबार बनाओ। और ठीक है, एक साहब रिटायर्ड हुई आर्मी से मेजर, दोस्तों से मशवरा करने लगे भाई क्या करें। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन कारोबार ये है कि पीर साहब बन जाओ, बस एक कब्र चाहिए आपको, वो कब्र को मुनासिब से ढूंढ लो, उसके ऊपर चादरें डालो, दो चार दीवारें खड़ी करो, किसी ने क्या पूछना है अंदर कौन है कौन नहीं है, बस आमदन का जरिया बन जाएगा बस। लेकिन यह है कि आवाम है बस इन्हीं चीज़ों के अंदर लगी हुई है, खुराफात के अंदर, इन्हीं को दीन समझ लिया गया है। जो असल दीन है कि मस्जिद के साथ ताल्लुक़ कायम करें, मस्जिद में आएं, नमाज पढ़ें, कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम करें, सुन्नत के साथ ताल्लुक़ कायम करें, सुन्नत पे अमल करें, शिर्क और बिदात से बचें, तौहीद को इख्तियार करें, उस दीन की तरफ कितने लोग आ रहे हैं? बहुत कम। किस्से कहानियों पे लोग खुश रहते हैं। हाँ, ऐसा मौलवी साहब बिठा दें जो 4 घंटे तक लतीफ़े सुनाए, वो मौलवी साहब वायरल हैं। अब भी सोशल मीडिया पे कौन से मौलवी साहब वायरल हैं जो लतीफ़े सुनाते हैं? सीधी सी बात है, लतीफ़े सुन के लोग खुश रहते हैं, संजीदा बात कोई सुनना नहीं चाहता दीन के नाम पे। या लोग कहानी सुनना चाहते हैं या लोग लतीफ़ा सुनना चाहते हैं, बस दीन के नाम पे ही हमें बताओ बस। पूरी कौम का मिजाज ही एंटरटेनमेंट का बन गया। नहीं, हमें एजुकेट करना है ख़ुद को भी, अपने आने वाली नस्लों को भी, वरना बस हम एक हुजूम रह जाएंगे, हमारा दीन बस किस्से कहानियों का दीन बन जाएगा। ठीक है, वहाँ बुतों का तवाफ़ हो रहा है या कब्रों का तवाफ़ होगा, वहाँ बुतों के सामने सजदा हो रहा है या कब्रों पे सजदा हो रहा होगा, और ये हो रहा है। इसीलिए तो मौलाना हाली ने कहा था कि वो अगर बुत को सजदा करें तो वो काफिर हैं, और हम अगर पीर साहब को करें तो हम मुसलमान हैं। तो बस हमें कुरान के साथ, सुन्नत के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है, कुरान का तर्जमा पढ़ना है, अपने तौर पे पढ़ें, कहीं कुरान क्लास अटेंड कर लें। हमारे यहाँ भी फजर के बाद हमने यहाँ तर्जमे की कुरान क्लास शुरू की है। आजकल तो वो हमारे जो कारी माज साहब हैं, उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ तो कुछ रुखसत पर हैं, लेकिन इंशाल्लाह से अभी 2-4 दिनों में दोबारा शुरू कर देंगे। फिर हदीस की जो है वो क्लासेज हैं ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, अपने तौर पे हदीस की किताब जो है वो पढ़ें, उसको अपने मुताले में रखें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ।